इसमें साउंड देने के लिए अंदर का दीजिए, लाइट ऑफ कर दीजिए, स्टेज का लाइट ऑफ कर दीजिए।
फुर्सत में रब ने तुझे बनाया, कितना सोचा होगा फिर ये रूप सजाया। ओ लगता है फुर्सत में रब ने तुझे बनाया, कितना सोचा होगा फिर ये रूप सजाया। बड़ी चमक है तेरे इस दीदार में, बड़ी चमक है तेरे इस दीदार में।
जैसी दिन है मेरे यार में, चांदी क्या करेंगे प्यार में। जैसी दिन है मेरे यार में।
होगी जो तकदीर है मेरी, राधे की उस हीर सुंदर हीर है मेरी।
राजा बोल रहा है मेरे यार में, राजा बोल रहा है मेरे यार में। मेरी जैसी दिल है मेरे यार में, जैसी दिल है मेरे यार में।
ओम शांति। आप सभी ने क्या देखा? क्या देखा? और भी बहुत अच्छी बात है। और बताइए, और क्या देखा? बहुत कुछ बता सकते हैं आप, जो भी बताए सब राइट है, सब अच्छा है। और भी कुछ देखा? कोऑर्डिनेशन। और कुछ देखा इसमें? गीत क्या था? सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसा गुण है मेरे यार में। आज दुनिया में मनुष्य पदार्थों को ज्यादा महत्व देते हैं, व्यक्ति को, व्यक्ति के गुण को इतना महत्व नहीं देते हैं। मैं आपको एक सुंदर इंसिडेंट सुनाता हूं। एक घटना है, एक व्यक्ति, एक ऑफिसर था किसी कंपनी में, तो बहुत अच्छा एक कार खरीद के लाया, बहुत अच्छा कार एकदम, और इतना छोटा सा एक बच्चा था उसका। सवेरे सवेरे जाके देखता है तो बच्चू एक पत्थर लेके वो कार में कुछ ऐसा से रगड़ के पूरा लिख रहा है पत्थर से। उसको इतना गुस्सा आया, जाके एक इतना डंडा लिया और जो लिख रहा था उसके हाथ में एकदम जोर से मारा, तो बच्चा एकदम जोर से चिल्लाया, इतना जोर से मारा कि एक पत्थर को पकड़ा है, छोटू सा बच्चा है 2 साल का, तो पूरा कस हो गया, एकदम ब्लीडिंग होने लगा, चिल्लाया जोर से, एकदम बिल्कुल बेहोश जैसा हो गया। क्या करेगा? तुरंत उसको दौड़ के हॉस्पिटल ले गया, जाना पड़ेगा, अपना बेटा है, क्या करेगा। लेके जाके देखा, प्लास्टिक सर्जन ने देखा, उसको कहा कि ये हाथ तो अब ठीक नहीं होगा, यहां से काटना पड़ेगा, पूरा क्रश हो गया बिल्कुल, और इतना छोटा सा मासूम लड़का है, हाथ इतना, ये सत्य घटना मैं बता रहा हूं। तो आखिर काटना पड़ा, 3-4 उंगली काट देना पड़ा हाथ का। क्या करे, रोया, बहुत रोया, बचाओ जैसे करके, डॉक्टर नहीं, बोले कि नहीं, संभव नहीं है, पूरा क्रश हो गया, पूरा फिनिश हो गया। फिर आके रोया बहुत, परेशान होके बच्चा को लेके आया, गाड़ी में जाके देखता है तो उसमें छोटा सा बच्चा क्या लिख रहा था, उसमें पत्थर में लिखा है आई लव यू पापा सो मच, उसमें लिखा है आई लव यू पापा सो मच। क्या मतलब है? हम छोटे मासूम सा बच्चा है, उसके मन में, दिल में क्या है, उसका प्यार, हम वस्तुओं से, वो आदमी को वस्तु अंधा कर देता है। आज दुनिया में साधन सुविधा, पैसा, धन, सब कुछ है, लेकिन व्यक्ति के आपस में जो प्यार स्नेह होना चाहिए, जो पारिवारिक स्नेह होना चाहिए, जो ममता होना चाहिए, जो प्यार होना चाहिए, वो वस्तु से गौण हो गया है। आज हम साधन को ज्यादा महत्व देते हैं, परंतु ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन बिहेवियर, आपस में जो संबंध, वो सब हमारे लिए बहुत मूल्यहीन है। परंतु गीत में क्या सुन रहे थे? सोने चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसा गुण है मेरे यार में। सचमुच सोना चांदी क्या है, आप सोचिए तो सही, क्या है? परंतु आज मनुष्य उसके पीछे अंधा है, बाकी सब कुछ भूल जाता है। और क्या देखा? ये तो गीत को बताया, और क्या देखा? मैं इसमें आपको दिखा रहा था कि द आर्ट ऑफ बैलेंस जीवन में एक सुंदर, देखो कैसे बैलेंस की कला, कितना एकदम सुंदर है, जाके एकदम राइट जगह पे पैरों में खड़ा होके कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है? अब देखा, हजारों लोग जाके देख रहे हैं, कितनी खुशी, कितनी ताली बजा रहे हैं, हजारों रुपया टिकट देके देखने जाते हैं लोग, किसको देखने के लिए? द आर्ट ऑफ बैलेंस को देखने के लिए। तो जिसके जीवन में बैलेंस नहीं है, वास्तव में वो जीवन में आनंद नहीं ले पाता है। जिसका जीवन में बैलेंस है, वही जीवन में सुखी है। और जिसके जीवन में बैलेंस नहीं है उसका जीवन स्ट्रेसफुल है, जीवन तनावग्रस्त है। तो आज दुनिया में जो मुख्य बीमारियां फैल रही है, आजकल हमारे पास बहुत कुछ सुंदर साधन है, हमारे पास सब कुछ, देखिए पहले जमाने जैसा नहीं है, आज हमारे पास सैनिटेशन से हैं, लोग एजुकेटेड हो गए हैं, स्वास्थ्य के बारे में जागृत है, इसलिए आज इन्फेक्शियस डिजीज बहुत कम हो गया है। पहले जमाने में हैजा होता था, गांव गांव पूरा साफ हो जाता था, बहुत सारी बीमारियां आज नहीं है, प्लेग होता था, मर जाते थे, परंतु हम ये सब, हमारे पास एंटीबायोटिक्स है, हमारे पास बहुत कुछ साधन सुविधा, इम्यूनाइजेशन है, ये बीमारियों को तो हम लगभग खत्म कर दिए। परंतु आज दुनिया में सबसे बहुत बड़ी समस्या जो है, आज मनुष्य जीवन में तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, जिसके कारण आज बहुत सारी बीमारियां बहुत तेज गति से फैल रही है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारियां, स्ट्रोक, पैरालिसिस हो जाता है एक साइड का, आपको पता होगा, कैंसर, ये सब बीमारियों का जड़ तनाव है, स्ट्रेस है। और ये क्यों हो रहा है? इसका मेन कारण है, आज हमारे जीवन में संतुलन नहीं है, बैलेंस नहीं है, मनुष्य एक मशीन की तरह जी रहा है। मनुष्य के पास जो, मनुष्य एक इमोशनल बीइंग है, हमारे पास एक इमोशन है, मनुष्य संवेदनशील है, हमारे पास जो भावना, जो स्नेह, जो प्यार, जो प्रेम होना चाहिए, धीरे 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 खत्म होकर आज मनुष्य एक रोबोट जैसा बन गया है, मनुष्य के पास आर्टिफिशियल सब कुछ है, जिसके कारण ये सब बीमारियां हैं। तो आप सभी का दिल से इस सुंदर परिवेश में स्वागत है, आपको रियलाइज कराने के लिए बुलाया गया है कि वास्तव में मनुष्य जीवन क्या है, हम सभी का जीवन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हम कौन है, ये सब बातें संसार की भीड़ भड़ाका में, अनेक प्रकार के लफड़ों में लोग भूल जाते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कौन हैं, क्यों आए हैं। तो आपको मैं एक सुंदर प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, शुभ संध्या, आपको एक सुंदर प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, द आर्ट ऑफ बैलेंस, जीवन में संतुलन की कला या बैलेंस रखने की कला क्या है, जिसके अभाव से ही आज दुनिया में हम सभी तनावग्रस्त हैं, और तनावग्रस्त होने के कारण ही सारी बीमारियां फैल रही है। आशा करता हूं आप यहां से एक सुंदर जीवन जीने की कला के साथ साथ जीवन में ये संतुलन रखने की कला भी सीख के जाएंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है। एक सुंदर कहावत है, लाइफ इज ए जर्नी, जीवन एक यात्रा है दोस्तों, जिसमें जो बैलेंस रखना सीखता है वही जीवन में सबसे ज्यादा मौज लेता है, जीवन का आनंद लेता है। जिसको बैलेंस रखना नहीं आता है, मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हो, एक साइकिल चला रहा है एक छोटा व्यक्ति, देखिए अगर उसको साइकिल चलाना नहीं आता है तो क्या होगा, घड़ी घड़ी गिरेगा, छिलेगा। अगर बहुत एक्सपर्ट है साइकिल चलाने में, आप देखना वो हैंडल भी छोड़ देगा, मस्त चलेगा, एकदम बिल्कुल आनंद लेगा। तो जीवन भी ऐसी एक यात्रा है, जन्म और मृत्यु दो स्टेशन है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो लंबी यात्रा है, इसमें जो जितना बैलेंस रखना जानता है वही जीवन में वास्तव में सबसे सुखी रहता है। सो क्या बैलेंस रखे, व्हाट बैलेंस यू हैव टू कीप, दो बातों का बैलेंस रखना जीवन में जरूरी है, एक है आपका वर्क, दूसरा आपका जीवन। ये संसार को कर्म क्षेत्र कहा जाता है, यहां कर्म के बिना एक पल भी आप जी नहीं सकते हो, कर्म करना जरूरी है। कोई कहते हैं हम कर्म सन्यासी है, छोड़ छाड़ करके बच्चे बीवी को अनाथ करके चले जाएंगे किसी जंगल में, किसी गुफा में कहीं बैठे हैं, लेकिन सांस लेना भी तो कर्म है, सोना भी तो एक कर्म है, खाना भी तो एक कर्म है, इसको छोड़ सकते हैं, छोड़ सकता है कोई? तो इसलिए ये संसार कर्म क्षेत्र है, यहां कर्म तो करना ही पड़ेगा। परंतु कई कर्म सन्यासी कहते हैं कोई काम धंधा करेंगे नहीं और दूसरों से मांगते रहेंगे और दूसरों के कमाया हुआ खाते रहेंगे, ये भी कोई जीवन है? सोचो तो सही, हम क्यों किससे मांग के खाएं, हमारे पास बुद्धि है, बल है, शक्ति है, भगवान हमें सब कुछ दिए हैं, क्यों ना हम खुद कमा के खुद खाएं, दूसरों को उससे हम और खिलाए, ना कि हम किसे मांग के खाते रहे, ये कोई जीवन है? तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें सब छोड़ छाड़ करके ऐसे कर्म संन्यास लेने के लिए बताया नहीं जाता है। यहां जीवन में एक सुंदर संतुलन, एक सुंदर समन्वय रखते हुए कैसे जीवन में हम स्वयं आधारित होके हम दूसरों को भी हम सहयोग दें, उनको भी कैसे आगे बढ़े, उनको सहयोग दें, वो सिखाया जाता है। मैं जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया था आज से 30 साल पहले, हमारी दादी माँ यहाँ, दादी प्रकाशमणि जी थे, उन्होंने कहा डॉक्टर यू हैव टू बिकम ए डबल डॉक्टर। मैं समझ नहीं पाया डबल डॉक्टर क्या होता है, तो मैं बोला दादी डबल डॉक्टर क्या होता है, तो दादी ने कहा देखो आप शारीरिक बीमारियों को तो ठीक कर रहे हो, परंतु साथ साथ आज दुनिया में हर एक के अंदर जो और प्रकार की बीमारियां हैं, आत्मा की बीमारियां हैं, जैसे किसी को घृणा करना, नफरत करना, गाली गुलज करना, गुस्सा करना, क्या ये बीमारी नहीं है? नहीं है, है कि नहीं? लोग नहीं समझते हैं कि बीमारी है। आज किसी को हार्ट अटैक होता है तो जब एकदम गुस्से में आता है, पूरा लाल पीला हो जाता है, उसका बीपी बढ़ जाता है, शूट करता है, तो हार्ट अटैक होता है। तो गुस्सा करना भी एक बीमारी है। इसी प्रकार किसी को इंसल्ट करना, किसी को नीचे दिखाना, किसी के साथ रीस करना, किसी के साथ रेस करना, ये सब बीमारियां हैं जिसके कारण आज मानव जीवन जिस प्रकार हम देख रहे हैं अनेक प्रकार के बीमारी से ग्रस्त है। तो दादी ने कहा आपको डबल डॉक्टर बनना है, आप तो फिजिकल डॉक्टर हो ही, लेकिन यू बिकम ए स्पिरिचुअल डॉक्टर। मेरा कहने का मतलब है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपको सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहीं जाके राम राम कृष्ण कृष्ण करने का शिक्षा नहीं दी जाती है। यहां घर गृहस्थ में रहते हुए भी अपना जीवन को कितना श्रेष्ठ बनाए, कितना सुंदर बनाए, वो शिक्षा दी जाती है। क्योंकि गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। छोड़ छाड़ करके भाग जाना वो तो एस्केपिस्ट है, वो तो कायर है, वो तो पलायनपंथी है, वो कौन सी विशेषता है? अरे आप मैदान में युद्ध करके चैंपियन बन के दिखाओ तब पता चलेगा। छोड़ छाड़ कर भाग गया जंगल में, मैं वर्ल्ड चैंपियन हूं, वो कौन सा वर्ल्ड चैंपियन है? तो रहो संसार में, अपने पैरों में खड़ा होके अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सबको संभालते हुए दूसरों को सहयोग दे के जीवन सुंदर जीवन जीना, ये जीवन है। तो भगवान संसार में गृहस्थ धर्म स्थापन करते हैं, ना कि सब सब छोड़ छाड़ कर भाग के सन्यासी बनने के लिए सन्यास धर्म स्थापन करते हैं। तो मैं तो कहूंगा आप सभी बहुत 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 भाग्यवान हो, फिर भी कोई ताली नहीं बजा रहे सवाल है मैं आपकी ही विशेषता सुना रहा हूं, आपको खुद को गारे में करना चाहिए तो आप सभी यहां कोई सन्यासी हो क्या? सभी सन्यासी तो नहीं हो ना? मैं सोचा सन्यासी उदासी है बैठे हो चुपचाप इसलिए। अरे आप सभी गृहस्थी हो, घर गृहस्थ में रहने वाले, आपकी महिमा सुना रहा हूं। गृहस्थ धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। भगवान आके हमारे संसार में गृहस्थाश्रम स्थापन करते हैं। देखो सतयुग त्रेतायुग में लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता आदि आदि जो होके गए सब गृहस्थ जीवन वाले, ना कि छोड़ छाड़ करके जंगल में जीने वाले। कहने का मतलब है ये संसार में हम रहते हुए, ये कर्म क्षेत्र में रहते हुए हमारा जीवन कितना बैलेंस हो, कितना संतुलित हो, कि हम अपना कर्म भी करें लेकिन साथ साथ हमारा जीवन ये दोनों के साथ एक सुंदर समन्वय रखे, दैट इज कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस। तो देखिए आपके लिए एक सुंदर सौगात लेके आया हूं, द आर्ट ऑफ बैलेंस। जीवन में कभी कभी हम दुविधा में होते हैं, इस रास्ते में जाएं कि इस रास्ते में जाएं, जाएं या नहीं जाएं, करें या ना करें, अनेक बार दुविधा में होते हैं। परंतु हमेशा एक बैलेंस का रास्ता तय कर लेना बहुत अच्छा है। एक ना चरमपंथी बनो ना नरमपंथी बनो, मध्यमपंथी बनना सबसे अच्छा है, बैलेंस का रास्ता रहना ठीक है। हर बात में आप देखिए, बहुत दुबला पतला एकदम फूंक देने से उड़ जाएगा वो अच्छा लगता है, एकदम मोटा हो जाओ इतना बड़ा वो भी अच्छा लगता है, ठीक आइडियल मटेरियल। बहुत कोई लंबा हो जाए 10 फुट का वो अच्छा लगेगा, एकदम गुड्डू सा इतना छोटू सा अच्छा लगेगा। इसलिए सब प्रकार का बैलेंस, सब हर बात में आपको बिल्कुल इतना कोई खाना खिलाए अच्छा लगेगा, पेट ही नहीं भरा होगा, इतना खिला खा लोगे तो क्या होगा, फिर बेचैन हो जाएंगे। बैलेंस, एक मिनट साइलेंस। ओम शांति। मैं आपको सुना रहा था कि जीवन में हमेशा एक मध्यम रास्ता ढूंढ लेना चाहिए, बीच का रास्ता तय कर लेना चाहिए, तो ही हम कन्फ्यूजन नहीं होगा, हम जीवन में आनंद ले सकेंगे। देखिए कहावत है बैलेंस इज ब्यूटीफुल, बैलेंस इज ब्यूटीफुल। देखिए एक हाथी है, लेकिन इतना बड़ा जानवर होते हुए भी एक छोटा सा बॉल के ऊपर बैलेंस करता है। आज लोग सर्कस में क्या देखते हैं, ये सब ट्रिक्स देखने के लिए हजारों रुपए टिकट देके जाते हैं देखने के लिए, तो कितना सुंदर लग रहा है। और भी एक सुंदर कहावत है बैलेंस इज ब्लिसफुल, जो बैलेंस रखता है बहुत मजा आता है, उसको आनंद आता है। मैं तो वो बहनों को माताओं को डबल हाथ से सैल्यूट करता हूं जो नौकरी भी करते हैं और अपना परिवार को भी संभालते हैं, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन और प्रोफेशनल जीवन, हर बात का बैलेंस रखते हैं। कितनी बड़ी कला है, सहज नहीं है, सहज नहीं है, मैं बता रहा हूं। अपने बच्चों को भी संभालना, अपने घर के सारे परिवार के सदस्यों को सबको संतुष्ट करना, अड़ोस पड़ोस को देखना, अपना हेल्थ को ठीक रखना, ऑफिस में जाके सब कुछ काम करना, कितनी बड़ी बात है। तो जो बैलेंस रखता है वही जीवन में वास्तव में ब्लिसफुल रहता है, बहुत एक सुंदर जीवन का वो अनुभव करता है। इसलिए कर्म और जीवन ये दोनों का एक सुंदर समन्वय हो, ये सुंदर बैलेंस हो, तो ही जीवन में मजा है दोस्तों। जो जीवन में बैलेंस नहीं रख पाता है वही जीवन में दुखी होता है। आज मैं देखता हूं दुनिया में लोग एक मशीन की तरह दिन रात काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते, जीवन में क्या प्राप्ति है। मैं आपको एक सुंदर घटना सुना रहा हूं। एक बहुत बड़ा बिजी डॉक्टर हमेशा क्लिनिक में खूब प्रैक्टिस कर रहा है, खूब मरीज दिन रात बिजी आ रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा उसका आता है, पापा पापा पापा, क्या बताने के लिए था, चुप भाग, समय नहीं, चल भाग, ले 100 रुपए ले भाग, चला जाता था। जब भी आए कुछ, पापा पापा पापा, दिन रात मरीज मरीज देख रहा है, पेशेंट देख रहा है, देख रहा है, पैसा कमा रहा है, हर बार जब भी आए उसको चुप जा भाग। एक महीना बीत गया, दो महीना बीत गया, बेचारा जब भी आए पापा सब डांट रहे हैं, 100 रुपए ले जा भाग। एक दिन आया तो उसको पापा वैसे ही बताया, हक पापा पापा नहीं नहीं, आप एक घंटे में कितना रुपया कमाते हो, कितना रुपया कमाते हो, लेकिन मैं 1000 रुपया कमाता हूं। जेब से निकाला, बोला लो 1000 रुपया, मुझे एक घंटा दो। कहने का मतलब है दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं, आपके बच्चों को पैसा नहीं चाहिए, आपके बच्चों को प्यार चाहिए, समय चाहिए। क्यों कह रहा हूं जानते हैं, मेरे पास आते हैं रिटायर्ड एज में, रिटायर्ड एज में मां बाप आते हैं यंग बच्चों को, टोटली आउट ऑफ ट्रैक, कोई ड्रग एडिक्ट है, कोई शराब पी रहा है, कोई नशीली चीजें पी के पूरा कैरेक्टरलेस बर्बाद। और जो ड्रग एडिक्ट हो जाता है उसको तो पैसा खूब चाहिए, क्योंकि वो सब खरीदाएगा, कहां से पैसा लाएगा। मां बाप को पैसा आए दिन मांगता रहते, मां बाप जब नहीं देते पिटाई। कौन से मां बाप चाहेंगे मेरे बच्चे मुझे पिटाई करें रिटायर्ड एज में, चाहेंगे आप सभी? रो रो के रिटायर्ड एज में लोग आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब इनको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी सिखाओ, इनको थोड़ा मेडिटेशन सिखाओ। जब वो छोटे बच्चे थे, जब उनको सिखाने का, देखने का, उनको समय देके सुधारने का जब समय था, आप तो अपने पैसा गिनने में व्यस्त थे, उनको समय नहीं दिया। जब आपके हाथ से निकल गया, आप जब वो बिगड़ चुके हैं, तब आपकी आंखें खुल रही है। इसको बुद्धिमान कहेंगे, कहेंगे बुद्धिमान? मैं आज देखता हूं माउंट आबू छोटा सा एक शहर है, यहां इट इज ए स्मॉल टाउन ऑफ होटल्स एंड हॉस्टल्स। यहां 200 करीब होटल्स हैं और 200 करीब हॉस्टल है, जहां मां बाप बहुत धनी परिवार के लोग हैं, जिसके पास बहुत संपत्ति है, पैसा है, छोटे छोटे बच्चों को हॉस्टल में से, छोटे छोटे बच्चों को हॉस्टल में इधर रख देते हैं, पढ़ाई करें हमारे बच्चे। हमारे जहां रहते हैं ग्लोबल हॉस्पिटल में, हम सभी बगल में एक हॉस्टल, कई हॉस्टल्स हैं, एक हॉस्टल अभी वो कहीं शिफ्ट हो गया है। कुछ साल पहले मैं देखता था, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका जो केयर टेकर था वो तो बिल्कुल रावण, मैं बता रहा हूं बिल्कुल रावण, बच्चों को ऐसे चिल्लाता था, ऐसे गालियां देता था, आप सोच नहीं सकते हो। मैं खिड़की दरवाजा कभी कभी बंद कर देता था, खाली गाली गुलज करे तो अलग बात है, कभी कभी ऐसे छोटे बच्चों को ऐसा फुटबॉल की तरह सूट मार देता था, वहां जाके बच्चे गिरते थे, ऐसा रोते थे, देखा नहीं जाता, मैं बंद कर देता। आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए आप लाखों रुपया दे देते हो, जिस बच्चा को ऐसे जीवन में टॉर्चर मिला है वो बच्चा बड़ा होकर एक आईएएस ऑफिसर भी बन जाएगा, आपके लिए उतना श्रद्धा रेस्पेक्ट रिगार्ड रहेगा? मैं आपको पूछ रहा हूं। वो भी कहेगा ओल्ड एज में कि तुम भी मुझे पैसा भेजते थे, मैं भी पैसा भेज देता हूं तुमको, भी ओल्ड एज होम में रख देता हूं, जाओ, कहेगा ना? नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा प्राय लुप्त हो गया है दोस्तों। हम विदेशी कल्चर को फॉलो करते करते आज हमारी क्या दुरावस्था है। मैं तो कहूंगा अपने बच्चों के साथ कभी ऐसा अन्याय मत कीजिएगा। माँ बाप का फर्ज है बच्चों को खाली पैदा करना नहीं, वो तो पशु पंछी जानवर भी पैदा करते हैं। आप अपने बच्चों को अपने पांव में एक चरित्रवान अच्छा इंसान बना के पांव में खड़ा करके दिखा दो, वो अपने आप सारे संसार की सेवा करेगा, अपने आप को सस्टेन करेगा। आप पैसा कमा के तीन जनरेशन खाएंगे सोच के आप अगर सोच रहे हो और दिन रात मशीन की तरह काम कर रहे हो तो ये आपके गलत फहमी है। मैं आपको बताऊंगा, मोस्ट ऑफ अस 50 साल तक, हमारे में अधिकांश लोग 50 साल तक पैसा 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 दिन रात सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे, अपना खाना पीना, अपने हेल्थ, अपने फैमिली, अपने बच्चे सब भूल जाएंगे, पैसा पैसा पैसा। और 50 साल के बाद सडन हार्ट अटैक हो गया, जितना कमाया था एक हफ्ता में आईसीयू में दे दिया। कितना बुद्धिमान है, कितना बुद्धिमान है हम नहीं। एक बैलेंस रखने की आवश्यकता है। सो व्हाट इज दैट वर्क एंड लाइफ बैलेंस, आई विल टेल यू। देखिए, वर्क एंड लाइफ बैलेंस मीन्स आपका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन और व्यवसायिक या प्रोफेशनल जीवन, ये चारों का एक सुंदर समन्वय आपको रखना पड़ेगा, तो ही कहेंगे वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, तो देखिए, आपके वर्क, आपके करियर, आपका बिजनेस, आपका परफॉर्मेंस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इधर आपका लाइफ, आपका हेल्थ, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके हैप्पीनेस, ये दोनों का एक सुंदर बैलेंस रख के जीवन में चलना है तो ही जीवन में मजा है दोस्तों। अमेरिका में देखा गया है कि 90% लोग, उनका जीवन बिल्कुल असंतुलित है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स डॉक्टर्स हैं अमेरिका में, उनका जीवन तो गधे जैसा जीवन है। मैं बताऊंगा, दिन में 18 घंटा काम करना पड़ता है और फिर दो दिन छुट्टी, पांच दिन गधे जैसा काम करेंगे और दो दिन छुट्टी, ऐसे भाग जाएंगे किधर जाके, पूरा कहां, किधर शराब पी के किसी समुद्र के किनारे में पूरा पड़े रहेंगे, दो दिन तक उनका होश ही नहीं। ये कोई जीवन है? सोचो तो सही। तो 90% लोगों का जीवन असंतुलित है, और अमेरिका में देखा गया है 54% लोग अनुभव करते हैं कि देयर इज ए सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन दैट वर्क लाइफ बैलेंस, उनके जीवन में बहुत बड़ा असंतुलन है, 54%। और सिंगापुर जैसा एक छोटा देश में भी देखा गया है कि 21% लोगों का जीवन असंतुलित है। इसलिए हम भारत में तो इतनी जनसंख्या है कि कौन सर्वे करे, कौन देखे। मैं कहूंगा कि आज दुनिया में बहुत बड़ा एक, वास्तव में एक समस्या है, बड़ी समस्या, कि लोगों के जीवन, अधिकांश लोगों के जीवन असंतुलित है, जिसके कारण आज बहुत प्रकार की बीमारियों से उत्रस्त है। तो जीवन में ये वर्क एंड लाइफ का बैलेंस क्यों चाहिए? व्हाई देयर शुड बी ए बैलेंस, देख लीजिए अच्छी तरह से, क्यों चाहिए? अगर कोई गिर गया तो क्या होता है? आप देखे होंगे कि किसी गांव में जो नट आते हैं खेल दिखाने के लिए, दो बांस गाड़ देंगे दोनों साइड में, उसके ऊपर एक रस्सी और उसके ऊपर बैलेंस करते हैं, तो कितने लोग तालियां बजा के कितना पैसा देते हैं, और वो पूरा बढ़िया से एकदम बैलेंस करके इस पार से उस पार चल के जाता है, मजा ही मजा। लेकिन रास्ते में कोई गिर गया तो, अगर ऊपर से गिर गया तो चकनाचूर, हड्डी पसली चूर। तो इसी प्रकार जीवन में जो बैलेंस रखता है उसको मजा तो आता है। बैलेंस इज ब्यूटीफुल, बैलेंस इज ब्लिसफुल, एंड बैलेंस गिव्स ब्लेसिंग्स। सभी से ब्लेसिंग्स प्राप्त करने का, दुआएं पाने का आधार भी वास्तव में बैलेंस है। तो जो जीवन में बैलेंस रखता है वह सबका आनंद लेता है, लेकिन जो गिर जाता है चकनाचूर सीधा। इसलिए आज दुनिया में देखिए, आपका जीवन तनावग्रस्त है, अगर तनावग्रस्त है तो डेफिनेटली देयर इज सम इम्बैलेंस इज देयर, कहीं ना कहीं तो असंतुलन है। तो सोचिए क्या मैं तनावग्रस्त हूं, कैसे पहचाने तनाव है कि नहीं। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, इफ यू डोंट माइंड हाथ उठाएंगे। जिनको कभी कभी एसिडिटी होती है, बहुत एसिडिटी, टू मच एकदम एसिडिटी होती है, हाथ उठाइए। अच्छा, जिनको रात को नींद नहीं आती है, कोई ऐसे है रात को नींद नहीं आती है, है। और जिनको कभी कभी अकेलापन लगता है, ऐसा लगता है, देखो यहां है, कभी कभी बहुत कुछ कारण नहीं है फिर भी दुखी लगता है, बहुत दुखी लगता है। अच्छा, और कभी कभी एकदम घबराहट होता है, घबराहट होता है ऐसे कोई। अच्छा, और चेस्ट पेन होता है, छाती दर्द होता है, बीच बीच में कभी कभी छाती में दर्द होता है, वो भी है। धड़कन कभी कभी एकदम दिल में धड़कन एकदम तेज धड़क करता है, वो भी है। ये जो सब निशानी बता रहा हूं, ये सब दोस्तों तनाव की निशानी है, ये सब टेंशन की निशानी है, ये कोई बीमारी नहीं है। बहुत सारी बातें बीमारी के कारण भी हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी लोगों को ये सब अगर है तो ये सब तनाव की एक निशानी है, टेंशन की निशानी। आज अगर दुनिया में देखा जाए, ऐसा एक कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको टेंशन नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी नहीं होगा। लेकिन किसी किसी का टेंशन या तनाव आता है, बादल की तरह चला जाता है, वो कोई बात नहीं है, वो तो हर एक का देखिए जीवन में होता है, कुछ ना कुछ परिस्थिति, कुछ ना कुछ घटना, कुछ ना कुछ कुछ होता है, होता है, वो कुछ नुकसानकारक नहीं है। लेकिन अगर तनाव आपके जीवन में बैठ जाता है लंबे समय तक, वो नुकसानकारक है, वो नुकसान करेगा, उससे ही हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और डायबिटीज, ये सब बीमारी शुरू हो जाती है। कोई एक भाई ऊपर आए, आए कोई भी आए, आए इसको पकड़िए, हाँ ऐसे सीधा पकड़िए, सीधा पकड़िए। ये कितना वजन होगा, कितना भारी है?
150 ग्राम
कह रहे हैं, 150 ग्राम है। मैं और कुछ आपसे जानना चाहता हूं, कितना भारी होगा? पकड़े पकड़े पकड़े, ठीक से पकड़े, कितना भारी होगा? ठीक से सोच समझ के बताए, कितना होगा?
200 बोल रहा था।
अच्छा 200 ग्राम बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। मैं अगर आपको कहता हूं, रखिए हाथ पकड़ के रखिए, मैं अगर कहूंगा एक घंटा ऐसे पकड़ के रखो, पूरा हिलना नहीं चाहिए, एक घंटे के बाद मैं पूछूंगा आपको इसको कितना भारी है,
ठीक है? मैं 1 किलो कहूंगा।
1 किलो कहेंगे। अगर मैं कहूंगा 10 घंटा पकड़ के रखिए ऐसा, बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए,
तो 50 किलो हो जाएगा।
कहते 50 किलो हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं क्यों कह रहा हूं, है तो वही ग्लास, है तो वही ग्लास, लेकिन मैं अगर एक घंटा बोलूंगा तो मेरा हाथ और नहीं पकड़ पाऊंगा, और नहीं पकड़ूंगा, और 10 घंटा के बाद कहते बाप रे बाप रे, तो 10 टन हो गया, मुझे तो और नहीं पकड़ पाऊंगा, बिल्कुल अब अभी छोड़ दूंगा। कहने का मतलब है टेंशन आया चला गया, ओ गया, ये तो कोई बात नहीं, 150 ग्राम है। लेकिन वो एक घंटा बैठ जाता है, 10 घंटा बैठ जाता है, 10 दिन बैठ जाता है, 10 महीना, 10 साल बैठ, कहिए तो 10 साल तक भी पकड़ के रखते हैं। कोई मान लीजिए किसी को इंसल्ट कर दिया, बस जीवन भर गांठ बांध के रखेगी उसे, जब भी उसको देखें मेरा तो खून उबलता रहता है, इसको एक दिन तो मजा चखा के सकूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसको, सारा जिंदगी भर उबलते रहेंगे, क्या होगा आप सोचो। आपको पता है कि कोई एक सिगरेट पीता है तो उसके हार्ट में जो नस होते हैं उसके अंदर, जैसे एमरी पेपर को, किसी सैंड पेपर को आपको लूंगा चमड़ी में घिसूंगा जोर से, क्या होगा? छिल जाएगा। ऐसे वो अंदर ऐसे छिल देता है, जिसको एंडोथेलियल डिसफंक्शन कहते हैं हम मेडिकल भाषा में, जिसमें फिर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो जाता है, उसमें प्लाक होता है, फिर ब्लॉक हो जाता है, फिर हार्ट अटैक होता है। तो एक सिगरेट कोई पीता है तो आधा घंटा तक उसका असर रहता है, वो हाथ के नस के अंदर आधा घंटा तक रहता है। लेकिन एक बार कोई गुस्सा करता है तो 30 दिन तक असर रहता है, 30 दिन तक। अगर किसी से तू तू मैं हो गया और उसको बदला लेने की आपके अंदर भावना हो गई, उसके प्रति घृणा नफरत हो गया, बस सारा जिंदगी, जब तक उस आदमी को आप माफ नहीं करते और भूल नहीं जाते हो, आदमी तब भूल पाता है जब उस किसी को माफ करता है, नहीं तो भूल नहीं पाओगे। फॉरगिव एंड फॉरगेट इसलिए कहते हैं। तो इसलिए जीवन में अगर ये बदला लेने की भावना, ईर्षा, नफरत, घृणा, ये जीवन भर की हमारे नुकसानदायक है, तो ये सब बहुत नुकसान करते हैं हमारे शरीर में। तो मेरा कहने का मतलब है, आपको अगर तनाव है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इम्बेलेंस है, और वो तनाव ही वास्तव में सारी बीमारियों का जड़ है आजकल। और देखा गया है कि 21% लोग घर का काम, ऑफिस का काम घर में आके करते हैं। अरे ऑफिस ऑफिस है, घर घर है, बिजनेस बिजनेस है, घर घर है, घर में आके भी वही धंधा करते रहो, अपने परिवार का आनंद फिर कब लोगे? आपको आश्चर्य लगेगा, बहुत लोग ऐसे करते हैं। ये कहीं सर्वे किया गया था अमेरिका में, 21% लोगों की यही हालत है। तो आप फैमिली में अपने बच्चों को ये सबको टाइम अगर नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? आप सोचो, आपके पारिवारिक जीवन का सुख पाएंगे आप? ऑफिस ऑफिस है, घर घर है, लोग ऑफिस में होंगे सोचते होंगे अरे आज घर में सब्जी नहीं है, अरे दूध नहीं है, क्या लाऊंगा? घर में होंगे ऑफिस का काम करते होंगे, ये कोई जीवन है? नहीं। इसी प्रकार 32% लोगों ने देखा गया है कि वो बहुत लेट आते हैं ऑफिस से, बहुत लेट आते हैं, जिसके कारण उनको स्ट्रेस है, ओवरवर्क करते हैं। पर्टिकुलरली सिटीज में मैं देखा हूं, मैं बॉम्बे में खुद पढ़ाई किया हूं इसलिए बता रहा हूं आपको, वहां बहुत कम तनख्वाह मिलता था। मैं आज से 25 साल पुरानी बात बता रहा हूं, जहां जब ट्रेनिंग कर रहा था मैं देखता था हॉस्पिटल में जो फोर्थ ग्रेड वर्कर्स हैं उनको 700-800 रुपया मिलता था। लोग कहां कल्याण विरार से पूरा लटकते हुए ट्रेन में, दो दो घंटा तीन तीन घंटा तक ट्रेन में लटकते हुए 6 बजे सवेरे नौकरी में पहुंचना है, 6 से 2 एक शिफ्ट करेंगे, 8 घंटा की ड्यूटी, 700-800 रुपया के लिए। तो परिवार को संभालना, सारा चलाना है, सब कुछ करना, आजकल दुनिया में 700-800 रुपया उन दिनों में भी कुछ भी नहीं, मैं बता रहा हूं। तो दो दो शिफ्ट करते थे, 6 से 2, 2 से फिर 10, 10 बजे फिर जाते थे घर से, टिफिन डब्बा लेके आते थे, खाते थे, दो दो शिफ्ट ड्यूटी करते थे। मान लीजिए कोई व्यक्ति 6 बजे पहुंचता है तो 2 घंटा ट्रैवल करके आता है, तो घर से कितने बजे निकलता होगा? 4 बजे। तो रोटी लेके आ रहा है तो घर से जो रोटी बनाने वाले कितने बजे उठते होंगे आप सोचो? अच्छा, और रात को 10 बजे ड्यूटी से छूटता है, घर कब पहुंचता है? 12 बजे पहुंचता है। कितना घंटा घर में रहा? इसलिए बहुत एक सुंदर सत्य घटना है, दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे थे, तो एक ने पूछा तेरा कितने बच्चे हैं? बताया कि मेरे 2 बच्चे हैं। बोला कि कितना बड़े हैं? बोला कि एक इतना और दूसरा इतना। अरे ऐसा कोई कहता है क्या? एक इतना और एक इतना बोलता है कोई? लेकिन कहता है एक इतना और एक इतना, क्या मतलब? तो जब घर जाता है देखता है कि बच्चे सोए हुए हैं, और वो उठने से पहले ही ऑफिस निकल गया, तो बच्चों को हमेशा सोया हुआ दिखा है, बोलेगा कैसे कि इतना और इतना? यही जीवन है लोगों की, आप सोच लीजिए। तो ओवरवर्क एक कारण है तनाव का। दूसरा कारण देखा गया, 70% लोग देखा गया है अमेरिका में, देखे कि बहुत ज्यादा ओवरवर्क काम करने से उनको मेजर, उनको बहुत एकदम जीवन में टेंशन और स्ट्रेस हो रहा है, 70% लोग। तो इसलिए कहने का मतलब है स्ट्रेस इज द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ द 21st सेंचुरी। आज दुनिया में सबसे बहुत बड़ी समस्या है तनाव, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि तनाव क्या चीज है। वास्तव में क्या चीज है तनाव? तनाव क्या चीज है? एक प्रकार की आंतरिक पीड़ा है, एक एगोनी है, एक मेंटल, एक प्रकार की दुख है, एक यातना है, एक कष्ट है, जो कई परिस्थिति समस्या आती है तो उसको हम जब मुकाबला नहीं कर पाते हैं, झेल नहीं पाते हैं, वो हमें ऐसा अनुभव होता है, और वो एक हमें चेतावनी देता है कि तुम सुधर जाओ, बदल जाओ। लेकिन उस समय हम अगर अपने आप को नहीं सुधार पाते हैं तो ही हमारे जीवन में फिर ये सब बीमारियां शुरू हो जाती है। मैं एक सिंपल उदाहरण देने से क्लियर होगा, टेंशन व स्ट्रेस किसे कहा जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास एक मधुमक्खी उड़ के आ रही है, एक मधुमक्खी उड़ के आ रही है, वो देख लिया, अरे एक मधुमक्खी आई, अरे मुझे काट देगा तो, अरे मर जाऊंगा तो, अरे अभी क्या हो जाएगा, जो मन में चल रहा है हलचल, उसको कहते हैं टेंशन, उसको कहते हैं स्ट्रेस। लेकिन मान लीजिए वो मधुमक्खी चला भी गया फिर भी वो सोच रहा है दोबारा आ जाएगा तो, काट देता तो, मैं मर जाता तो, सोच सोच के 1 घंटा तक परेशान, उसको भी टेंशन कहेंगे, उसको भी एंग्जाइटी कहेंगे। और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये कह रहा हूं कि टेंशन माना, TEN, टेन माना 10, SON माना बेटे, किसके 10 नालायक बेटे पैदा हो जाएं तो जैसी हालत होगी ऐसा को उसको टेंशन कहते हैं। तो हमारी एक मानसिक द्वंद है, एक मानसिक असंतुलन है, एक दुविधा है, एक कष्ट है, एक यातना है, एक पीड़ा है, एकदम मानसिक एक यातना है जिसको हम टेंशन व स्ट्रेस कहते हैं। तो आज देखा गया, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा देखा गया कि 60% आज जो बीमारियां हमको हो रही है इसका जड़ टेंशन है, इसका जड़ टेंशन है। और जिसको टेंशन होता है, मैं बताया, शरीर का एक भी हिस्सा नहीं रह जाता जिस पर बुरा असर नहीं होता है। मैं तो हार्ट का एक उदाहरण दिया, जिसको टेंशन होगा एसिडिटी पैदा हो जाएगी, रात को नींद नहीं आएगी, धड़कन बढ़ने लगेगा, बीपी चढ़ने लगेगा, मसल्स क्रैम्प होने लगेगा, हाथ पांव ठंडे होने लगेगा, पसीना छूटने लगेगा, घबराहट हो, क्या क्या नहीं होगा, कितनी क्या क्या हो जाती है, सारे शरीर का एक सेल भी बच नहीं जाता है, सब पर बुरा असर होता है। तो टेंशन स्ट्रेस वास्तव में ये बहुत नुकसानकारक है। जो लंदन यूनिवर्सिटी में 20 इयर्स तक स्टडी करके देखा गया कि कोई अगर सिगरेट पीता है या बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल फूड खाता है, जितना नुकसान नहीं है, टेंशन करता है तो उससे ज्यादा नुकसान होता है। और जिसको टेंशन होता है बहुत जल्दी एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी बुढ़ापा शुरू हो जाता है। 40 साल का होगा दिखेगा 60 साल 70 साल जैसा। आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका बाल 20 साल भी नहीं हुआ है, सफेद होना शुरू हो गया है। तो सबको टेंशन है, छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक। मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं, मुझे तो रहम आता है। हम सब स्कूल में पढ़ते थे, एक नोटबुक एक किताब छोटा सा था, आजकल के बच्चों का स्कूल बैग देखो जैसे कि गेहूं की बोरी, बेचारे सीधा खड़े भी नहीं हो पाते, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। तो इतना टेंशन है बच्चों को भी, पढ़ाई का किताब का आप सोच नहीं सकते। सबका जीवन तनावग्रस्त है, सबका, बच्चे बूढ़े सब 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 सब, इसलिए दुनिया की यही हालत है। तो देखिए, इन द मॉडर्न टाइम स्ट्रेस इज इमर्जिंग एज द नंबर वन साइलेंट किलर अमंगस्ट ऑल द डिजीज अफेक्टिंग द ह्यूमन बीइंग। आज जितने भी ये सब बीमारियां आज मनुष्य को ग्रस्त कर रही है, इसमें से देखा गया है सबसे वन साइलेंट किलर स्ट्रेस है। आज कोई कहता है उसको हार्ट अटैक हो गया इसलिए मर गया, लेकिन हार्ट अटैक क्यों हुआ अगर जाके आप थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करेंगे आपको पता चलेगा। घर में कुछ हुआ, तूतू मैमे हुआ, एकदम गुस्सा चढ़ा, हार्ट अटैक, सडन डेथ। कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति आती है, किसका बिजनेस में एकदम लॉस हो गया, बिल्कुल लाखों करोड़ों रुपया, एकदम टेंशन हुआ, हार्ट अटैक, फिनिश। तो मौत का मेन एक कारण देखा गया आज कि टेंशन है, सबसे मोस्ट और साइलेंट किलर है। सो स्ट्रेस इज इमर्जिंग एज द नंबर वन प्रॉक्सी किलर बिहाइंड द इनिशिएशन एक्सर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल द लाइफस्टाइल डिजॉर्डर्स। आज दुनिया में जितने भी बीमारियां हमारे जीवन शैली से जनित है, अर्थात हमारे असंतुलित जीवन से पैदा हो रही है, वो सब बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर, ये सब बीमारियों को हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, जीवन शैली जनित बीमारी है। मनुष्य जीवन जैसा होना चाहिए ऐसा नहीं है, हम आज जो नहीं खाना चाहिए खा रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए कर रहे हैं, जैसा जीवन उल्टा जीवन। मैं अभी बॉम्बे में एयरपोर्ट से आ रहा था, रात को फ्लाइट थोड़ा देर पहुंची, तो मैं रात को 1:30 बजे लौट रहा था, देखा एक पार्क में इतना बड़ा बड़ा सेट सेट लोग, पेटू पेटू इतना बड़ा बड़ा सेट वॉकिंग कर रहे सब, रात को 1:30 बजे। रात को 1:30 बजे कोई वॉकिंग करता है क्या? क्यों वॉकिंग कर रहे हैं? क्योंकि उठेंगे 12 बजे, खाएंगे और जो भी खाके दुकान जाएंगे 1 बजे खुलेंगे, रात को 12-1 बजे तक दुकान खुलेंगे, कब उनको फुर्सत है एक्सरसाइज करने के लिए। रात को 12-1 बजे दुकान बंद करके खाके थोड़ा पार्क में वॉकिंग कर रहे, उल्लू जैसा जीवन पूरा, सिर नीचे टांग ऊपर, क्या होगा सोचिए। साइंटिस्ट लोगों का कहना है रात को 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक ये समय सोने का समय है। इस समय जो सोता है उसके ब्रेन से जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो बिल्कुल एकदम मिनिमम सिक्रेट होता है। जो इसी समय नहीं सोता है 10 से 4 बजे तक, इस समय जो जागता है उसके ब्रेन से बहुत सारे कैटेकोलामाइन्स, एड्रेनालिन्स, नॉरएड्रेनालिन्स, जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, जो हमारे बीपी बढ़ाते हैं, शुगर बढ़ाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, सब कुछ बढ़ा देते हैं, ऐसे हार्मोन्स खूब सीक्रेट होते हैं। इसलिए आज का मनुष्य, मैं बताऊं, मनुष्य का जीवन बिल्कुल एकदम उल्टा, उल्लू जैसा जीवन है। तो इसलिए ये सब बीमारियां, और आज 5 बीमारियां मुख्य रूप में बढ़ रही है, बता रहा था, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज और कैंसर। ये 5 बीमारियों को लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता है। ये बीमारियां बहुत तेज गति से बढ़ रही है, और इसमें से सबसे नंबर वन अगर किसको रखें तो क्या कहूंगा, डायबिटीज। घर घर में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, जहां देखो जिधर देखो, और इसके लिए कितने मौत हो रहा है आप सोच नहीं सकते हो। पिछले साल हमारे देश में 1,000,000 लोगों का मौत हुआ सिर्फ डायबिटीज के कारण, डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन से। एक साल में अगर 1,000,000 लोग मर जाते हैं एक बीमारी के कारण से, आप तो सोच लो 80% डायबिटीज मरीजों को हार्ट अटैक होता है, 25% हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट को हार्ट अटैक होता है। तो सोचिए किस प्रकार बढ़ती जा रही है। ये आप क्या देख रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जगलिंग। तो जीवन में हम सभी एक एक जगलर है दोस्तों, सभी एक एक जगलर है। और जीवन में पांच, हम सभी के जीवन में पांच बल है, वो पांच बल को हम जगलिंग करते रहते। देखो पांच बल है, वो जगलिंग कर रहा है, देखो कितना फास्ट कर रहा है, फिर भी एक भी नहीं गिर रहा है। जिसको जगलिंग करना आता है बहुत सुंदर देखना, कितना भी बल लेके वो करता है वो गिरेगा नहीं एक बार। तो हर एक के जीवन में हमारे पांच बल है, मैं बता रहा था क्या क्या है। एक है हमारा वर्क, हमारे कर्म, दूसरा हमारा हेल्थ, तीसरा हमारी फैमिली, चौथा हमारे फ्रेंड्स व सोसाइटी, और पांचवा हमारी स्पिरिट अर्थात हमारी आत्मा। और इसमें से जो वर्क है, दिस इज अ रबर बॉल, ये एक रबर बॉल है। अगर रबर बॉल आपके हाथ से गिर जाए तो क्या होगा, कोई बात नहीं, बाउंस बैक हो जाएगा, फिर पकड़ लेंगे उसको। लेकिन बाकी जो चार बॉल है, ये हेल्थ फैमिली फ्रेंड्स और स्पिरिट, ये सब शीशे का बॉल है। शीशा हो या दिल हो, अगर ये गिर गए तो टूट जाएंगे। कहने का मतलब है आज हम सभी इसको बहुत प्रायोरिटी देते हैं, बाकी ये सबको नेग्लेक्ट कर देते हैं, काम छूटना नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों एक बार बीमार हो जाते हैं, कितनी सफरिंग्स, समय जाता है, पैसा जाता है, सब कुछ जाता है, फिर से वो नॉर्मल स्वास्थ्य मिलना डिफिकल्ट भी हो सकता है। इस प्रकार परिवार किसी का एक बार बर्बाद हो गया, क्या होगा, सारा जीवन में मिलेगा फिर? इसलिए फ्रेंड्स, किसी के साथ कुछ हो गया, एक बार दोबारा हो सकता है दोस्ती? इसलिए कहते हैं दिल में आने का रास्ता तो है, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है दिल से। इसलिए कहते हैं दिल तोड़ के भाग जाओ। दिल से आने का, किसी के दिल में बैठने का रास्ता है, किसी के दिल में आप बैठ सकते हो, लेकिन दिल से निकलने का रास्ता नहीं है। इसलिए निकलना है तो आपको तोड़ के ही निकलना पड़ेगा। मेरा दिल तोड़ दिया, कहते हैं इसलिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम अपना स्वास्थ्य को नेग्लेक्ट करते हैं, अपना फैमिली को नेग्लेक्ट करते हैं, हमारी सोसाइटी को नेग्लेक्ट करते हैं, और इसके बारे में तो नॉलेज ही नहीं किसको। आत्मा की प्रगति के लिए कोई सोचता ही नहीं है। लेकिन हर एक के जीवन में जो भी हम करते हैं, ये संसार के लिए भौतिक जगत में ही सब कुछ रह जाता है दोस्तों, साथ में हम कुछ लेके जाने वाले नहीं है। जो भी कुछ कर रहे हैं यहां ही रह जाता है। आत्मा के लिए हमें क्या कमाई करनी है, जो जन्म जन्मांतर हमारे साथ चले वो दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। जिस जो सीखने के लिए आप माउंट अबू इधर आए हैं, वो बातें आपको यहां सिखाई जाएगी, हमारी बहनें दूसरे सभी सिखाते होंगे ये सारी बातें, आप वो समझ के जाइए। एक बहुत सुंदर कहानी आपको सुनाता हूं। एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा सेठ, उसका बिजनेस विदेश में भी था, बहुत चार बीवियां थी उनकी, और वो चारों को बहुत सुंदर सुंदर बंगलो बना के दे दिया था। सबसे जो चौथी थी बीवी, यंग थी सबसे, उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था, कहीं भी जाता था साथ में लेके जाता था, सब कुछ खिलाता था, सब कुछ करता था, उसको सारा पूरा इंपोर्टेंस देके रखा था। थर्ड जो है उसको थोड़ा लेस इंपोर्टेंस, सेकेंड को और थोड़ा लेस, और पार्डन, अच्छा ओके, आप जानते हैं, ओके ठीक है। तो आप अगर जानते हैं तो कहने का मतलब है कि दूसरा किसी ने सुनाया होगा, तो कहने का मतलब है कि जीवन में, अच्छा हाँ ओके कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है कि जीवन में जो प्रायोरिटी जिसको देना चाहिए वो हम नहीं देते हैं, जिसके कारण फिर बाद में हम पश्चाताप करते रहते हैं। कहने का मतलब ये सब बातों को हम बैलेंस रखना जरूरी है, पांचों बातों को। सो हाउ टू कीप अ बैलेंस, ये जीवन का कैसे हम समन्वय रखें, संतुलन रखें, बैलेंस रखें, मैं आपको तीन तीन बातें सुनाऊंगा, तीन तीन बातें। सबसे पहले जीवन में अगर आप बैलेंस रखना चाहते हो तो एक जीवन का एक गोल सेट करो कि जीवन में मेरा जीवन का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। जिसका जीवन में कोई गोल नहीं होता है, कोई लक्ष्य नहीं होता है, लक्ष्यहीन मानव और एक राडरलेस सिप, दोनों को समान कहा जाता है। जैसे किसी दिशा ही किसी नहीं है, कहां जाना है, क्या समुद्र में कहां एक नाव चल रहा है, एक जहाज चल रहा है, क्या पता है कहां जाएगा, कहां पहुंचेगा। तो जीवन में हमें क्या करना है, जीवन में एक गोल रखना है। आजकल बच्चों के लिए खास मैं बता रहा हूं, मां बाप फोर्स करते हैं तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, नहीं, सारा जीवन उनको जीना है, देखिए उनकी रुचि क्या है। मैं प्रैक्टिकल जीवन में देखा हूं इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब मेडिकल कॉलेज में हम पढ़ते थे उस समय कई इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के आके हमेशा हमारे हॉस्टल में पढ़े रहते थे, उनको डॉक्टर बनने की इच्छा थी, उनके माँ बाप जबरदस्ती इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल किया, उनको रुचि नहीं है, इधर आके पढ़े रहते, तो वो जीवन में करियर में कभी सक्सेस होंगे, सोचिए तो सही, फेल। इस प्रकार मेडिकल कॉलेज के कई लड़के ऐसे जाके और कहीं जाके पढ़ने की रुचि नहीं उनको, तो कभी किसी में फोर्स नहीं करना चाहिए किसी को, उनकी रुचि क्या है देखिए, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, इस प्रकार सेट ए लिमिट। जीवन में हमेशा एक लिमिट रखना जरूरी है, हर एक चीज का लिमिट होता है तो अच्छा है, जैसे आप रास्ते में ड्राइव करते हैं तो स्पीड लिमिट भी होता है, विदेश में तो जगह जगह कैमरा होता है, अगर स्पीड लिमिट कोई क्रॉस कर गया तो उसको एकदम फाइन आता है, बहुत हैवी अमाउंट। इस प्रकार हाइट लिमिट, आपको हमेशा कहीं भी जाओ देखिए हर एक का समय का भी सीमा होता है, टाइम लिमिट होता है, तो लिमिट होता है, जीवन में भी हमें लिमिट रखना जरूरी है। लेकिन आज दुनिया में ऐसा दौड़ है, 99 के चक्कर में सब पड़े हैं, कैसे जितना ज्यादा हो सके, जैसे कि साथ में सब लेके जाएंगे, कुछ साथ में जाने वाला नहीं है, जिस घड़ी हम शरीर छोड़ देंगे गया सब, दूसरा किसी के साथ शादी कर लेंगे, सेकंड बीवी क्या बोली, मैं तो शादी कर लूंगी, सब चला जाएगा दूसरे किसी के पास, इसलिए एक लिमिट रखना है, मुझे नहीं, ये मेरा लिमिट है। और डू दी जॉब यू लाइक, जीवन में हमेशा जो हमें पसंद है, जो अच्छा लगता है वही करें, तो ही जीवन में सक्सेस होंगे, जीवन में संतुष्टता होगी, बैलेंस होगा, लाइफ में एंजॉय करेंगे। इसलिए हमेशा एक जो अपना मन पसंद का काम करना चाहिए उसमें आनंद आएगा, मजा आएगा। और तीन बातें आपको सुनाऊंगा, टाइम मनी एंड हेल्थ, समय संपत्ति और स्वास्थ्य, ये तीनों का भी बहुत एक सुंदर समन्वय संतुलन रखना जरूरी है, तो ही जीवन का बैलेंस आप अनुभव कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा, टाइम मैनेजमेंट क्या करना है। देखिए जीवन में सबके लिए 24 घंटा है, परंतु ये समय को कैसे सदुपयोग करें, इसलिए भगवान हमें सिखाते हैं कि बच्चे एक टाइम टेबल बनाओ, रोज सवेरे कितने बजे उठना है, उसके बाद क्या करना है, कब नहाना है, कब नाश्ता करना है, कब क्या करना है, कब ऑफिस जाना है, कब बिजनेस में जाना है, कब लौटना है, कब खाना खाना है, पूरा सवेरे से लेकर रात तक कितने घंटा सोना है, कब से कब तक सोना है, ये एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, मिनट टू मिनट टाइम। जैसे बड़े बड़े वीआईपीस, गवर्नर, प्रेसिडेंट जैसे होते हैं, उनका भी प्रोग्राम होता है मिनट टू मिनट प्रोग्राम। जीवन में जो ऐसे टाइम टेबल बना के अपना जीवन को चलाता है, वो कभी भी उसका टाइम वेस्ट नहीं होता है, जीवन में वो आनंद लेता है और सफल भी बनता है। जिसका समय का कोई टाइम टेबल नहीं है, वो जैसे कि बेपेंदे का लोटा है, जिस भी जिधर लुढ़कता रहेगा, कोई आके कहेगा क्या कर रहे हो भाई, मैं ऐसे ही खड़ा हूं, चलेंगे उधर थोड़ा मार्केट में, उधर एक चलो, चल पड़ा उधर, फिर कोई बोलेगा इधर जाइए, चलो उस तरह, नहीं, समय वेस्ट होता है। हम अपना जीवन का टाइम टेबल सेट करें ताकि टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वेस्टिंग टाइम मीन्स वेस्टिंग लाइफ। जो जीवन को नष्ट करता है, जो समय को नष्ट करता है, वो अपना जीवन को ही वास्तव में नष्ट करता है। तो इसलिए समय का सदुपयोग करने के लिए हम एक टाइम टेबल बनाए, मुझे क्या क्या करना है, कब कब सोना है, कब जागना है, कब क्या करना है, सब फिक्स करना है। इस प्रकार प्रायोरिटाइज योर वर्क, आपको कौन सा कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको आप प्रायोरिटी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको पहला दिन करना, बाकी जो लेस इंपोर्टेंट है अगर छूट भी गया तो कल कर देंगे, कोई बात नहीं, काम रह गया तो कल कर देंगे, लेकिन बाकी चीजों को हम लेस इंपोर्टेंस देते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन काम नहीं छोड़ना चाहिए, बाकी सब जो जाए फिर बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। तो इसलिए जो काम बहुत महत्वपूर्ण है उसको पहले करना है। सॉल्व वन प्रॉब्लम एट ए टाइम, जीवन में बहुत सारी समस्या आ सकती है, परंतु एट ए टाइम एक ही समस्या को अगर समाधान करेंगे तो जीवन में टेंशन नहीं होगा, फिर आप सुखी रहेंगे। हजार प्रॉब्लम एक ही साथ सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसको भी आप ध्यान रखना है, तो ही समय का सदुपयोग होगा। और इसी प्रकार हमें भगवान सिखाते हैं, मेरे बच्चे तुम सभी मशीन नहीं हो जो 24 घंटा काम करते रहो, नहीं, समय को 8-8 घंटा तीन हिस्सा में बांटना है। पहला 8 घंटा किसमें दें, इसमें एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा है, पहला 8 घंटा हम अपने लिए यूज करें, अर्थात खाना पीना सोना नहाना धोना रिलैक्स करना, 8 घंटा अपने लिए, 8 घंटा जी जान लगा के आप मेहनत करो, ऑनेस्टी के साथ जितनी कमाई होगी मेरे ख्याल से उससे कमी नहीं होगी जीवन में, जो आवश्यक है भगवान उतने में दे देंगे। कोई ईमानदारी से मेहनत करता है तो उसको इतना जरूर मिल जाएगा जो अपने परिवार को खुद को वो चला सकता है बहुत आसानी से। तो 8 घंटा ईमानदारी से मेहनत करना है, 8 घंटा अपने लिए खाना पीना सोना रेस्ट करना, क्योंकि शरीर भी एक मशीन है, इसको भी रेस्ट देना जरूरी है। देखा गया है जो बहुत कम नींद करते हैं या बहुत ज्यादा नींद करते हैं उनको ही ज्यादा हार्ट अटैक, ज्यादा ही हाई ब्लड प्रेशर, ज्यादा ही डायबिटीज हो रहा है। इसलिए आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, हमारे देश में जो बहुत सुंदर शास्त्र है, सर्वशास्त्र शिरोमणि कहते हैं जिसको, उसमें भी भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, अति निद्रा अनिद्रा योगी का लक्षण नहीं है। आज साइंटिस्ट वही प्रूफ करके दिखा रहे हैं जो हमारे देश में हजारों साल पहले हमारे शास्त्र में लिखा है। तो साइंटिस्ट भी कहते हैं टू मच स्लीप एंड लेस स्लीप कॉजेस हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। तो हमारे नींद कम से कम 6 घंटा, 5-6 घंटा अगर सोते हैं, साउंड स्लीप सोते हैं, मोर देन सफिशियंट। लोग 8 घंटा 10 घंटा सोते रहते हैं बिल्कुल, नहीं तो कहीं क्रिकेट मैच हो गया, कुछ हो गया, तो बस आंख फाड़ फाड़ के पूरा सारी रात, फिर ऑफिस में जाके उबासी खाते रहेंगे। नहीं, तो जीवन में बैलेंस रखना जरूरी है। तो 8 घंटा अपने लिए, 8 घंटा काम, फिर 8 घंटा बचता है वो क्या करना है, दैट 8 आवर्स यू हैव टू स्पेंड फॉर योर फैमिली, योर सोसाइटी एंड परमार्थ के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपने आत्मा की कमाई के लिए कुछ तो समय निकालो। जैसे आप समय निकाल के आए हो, आप सभी बिजी होंगे, मुझे पता है आपके सभी व्यस्त होंगे अपने अपने कारोबार में, नौकरी में, सब में, लेकिन आपने, आप सभी समय निकाल के आए हो, इसलिए मैं दिल से आपको बधाई देता हूं। आज के भाग दौड़ के जीवन में लोगों के पास फुर्सत ही नहीं, अपने लिए फुर्सत नहीं है, लेकिन आप सभी समय निकाल के आए हो, इसलिए आपको दिल से बधाई कहूंगा। तो देखिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए समय दो, अपने परिवार के लिए समय दो, अपने आत्मा की उन्नति के लिए कुछ तो समय निकालो, तो ही जीवन में बहुत एक सुंदर समन्वय होगा। इस प्रकार मनी मैनेजमेंट, आपके पास जो संपत्ति है इसका कैसे संतुलन रखेंगे, कैसे एक बैलेंस रखेंगे जो जीवन में सुखी रहेंगे, कभी भी पश्चाताप नहीं करेंगे। चाणक्य ने बहुत लॉन्ग बैक ही हैज टोल्ड समथिंग, आप सभी को पता होगा, चाणक्य ने कहा है, अर्थ अनर्थम चिंतय नित्यम नास्ति ततः सुख लेसः सत्यम। अर्थ को अनर्थ समझो, इसमें लेस मात्र भी सुख नहीं है समझ लो। कहने का मतलब है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो आज दुनिया में, मनुष्य जीवन में पैसा चाहिए, क्योंकि दुनिया में दो बाबा है, एक हनी बाबा, एक है मनी बाबा। ये हनी बाबा कौन है आप यहां समझेंगे, मीठे थे मीठे बाबा, शिव बाबा, परमात्मा, जिसको हम हनी बाबा कहते हैं। लेकिन मनी बाबा भी चाहिए, क्योंकि इसके बिना भी आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो वो भी चाहिए जरूर, परंतु टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। आप जिसके पास आज ज्यादा पैसा है उसको ज्यादा टेंशन है, ज्यादा स्ट्रेस है, बिल्कुल पैसा नहीं है उनको भी स्ट्रेस है। लेकिन आपको इसलिए भगवान को हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, साई इतना दीजिए। क्या एक सुंदर गीत है ना, कि हम कोई, हम भी भूखा न रहें, कोई साधु भी आए तो भूखा न जाए। तो कितना सुंदर है देखिए, तो भगवान इतना दे ही देते हैं जो जीवन में संतुलन करके चलता है। तो हमारी संपत्ति का कैसे सदुपयोग करें, तीन बातें, अगेन मैं तीन बातें सुनाऊंगा। एक है सेल्फ, कि अपनी आत्मा की प्रगति के लिए। देखो इधर आप आए हो, अच्छे अच्छे यहां लिटरेचर लेके जाओ, अच्छे अच्छे डीवीडी वीडियो लेके जाओ, घर में कभी भी समय निकाल के अपने बच्चों को दिखाओ, सबको दिखाओ, पड़ोसी को दिखाओ, खुद देखो, फिर ये बातों को रिकलेक्ट करो, उधर वो आत्मा की उन्नति होगी, प्रगति होगी। इसी प्रकार आप अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा ये करो, तो ही तो आप हेल्दी रहेंगे। आप खुद खाएंगे नहीं, लोग दूसरों को सब देते रहते हैं, खुद देखो तो एकदम बिल्कुल बीमार, खुद पहनेंगे भी नहीं ना। खुद को, ये शरीर को भी, ये शरीर भी गाड़ी है, आप गाड़ी को कभी सफाई नहीं करोगे, सर्विसिंग नहीं करोगे, चलाओगे नहीं, उसको तेल भी ठीक से नहीं भरोगे, गाड़ी क्या होगी, खराब हो जाएगी। तो ये शरीर को भी संभालना जरूरी है। तो अपने लिए कुछ समय निकाल के, पैसा निकाल के खुद के लिए यूज करो, कुछ अमाउंट अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, जिसके ऋण हम कभी भी चुप्त नहीं कर सकते। आज दुनिया में हम पाश्चात्य सभ्यता को अंधानुकरण करते करते क्या हाल हो गया, मैं आपको बताता हूं। विदेश में आप जाओ देखो, 18 साल के बाद बच्चे आउट, माँ बाप उनको घर से भगा देते हैं। अगर बच्चा घर में रहेगा भी, कई ऐसे कंट्रीज है उसे पैसे लेते हैं, किराया लेते हैं, माँ बाप बच्चों से किराया लेते हैं, तो क्या उनका फैमिली रिलेशन है, आप सोच लीजिए। तो वहां तो लाइफ ऐसे है जैसे जानवरों की जीवन जैसे है। मैं आपको बता रहा हूं, एक भाई विदेश का था, एक फोटो दिखा रहा था, बोला कि ये हमारा फैमिली का फोटो है, उसमें 30-40 लोग होंगे, सब एक एक को आइडेंटिफाई कर रहा था, ये मेरी बहन है, ये मेरे मम्मी है, फिर ऐसे सबको आइडेंटिफाई करके एक आदमी था उसको दिखा के कहता है ये मेरा मम्मी का हस्बैंड है, कहता है मेरा मम्मी का हस्बैंड है, क्या मतलब हमारे देश में कोई ऐसा कहता है क्या? तो इसलिए कह रहा है कि उसका मम्मी का फोर्थ हस्बैंड है, क्योंकि वो उसका बाप जो है वो डाइवोर्स कब से हो गया है, वो तीसरी बार शादी करके चौथे बार शादी करके इसका फोर्थ हस्बैंड है, तो वो उसको पैदा किया नहीं, बचपन से उसे कभी प्यार मिला नहीं, कैसे कहेगा यह मेरा बाप है, तो मेरे मम्मी का हस्बैंड है। तो इस प्रकार का जीवन है विदेश में, आज भारतवर्ष में भी यही हालत है मैं बता रहा हूं। तो परिवार में कैसे प्यार कैसे स्नेह हो, हमारे भारतवर्ष में हमारी संस्कृति हमारे सामाजिक जीवन पारिवारिक जीवन इतना श्रेष्ठ है, दुनिया में कहीं नहीं है मैं बता रहा हूं। लोग वही तो सीखने के लिए भारत में आते हैं, लेकिन हम आज पाश्चात्य सभ्यता को अंधानुकरण करके आज हमारी हालत भी क्या है। तो हमारे परिवार के लिए कुछ ना कुछ हम समय खर्च करके अपने माँ बाप से लोग अलग हो जाते हैं, फिर माँ बाप कहीं बच्चे कहीं किधर कहीं, वो सुख नहीं है। तो सबको मिलजुल के सब मिलके रहें, सबके लिए कर्तव्य है, फ्यूचर के लिए कुछ अमाउंट हमें रखना जरूरी है, क्योंकि अचानक कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो हम किसको मांगे कहां से मांगे, अच्छा नहीं है। कुछ अमाउंट हम अपने पास रखें ताकि अचानक जरूरत होगा कुछ होगा तो हम उसके लिए खर्च कर सके। तो अपने जितने भी कमाई है जितने भी हमारे पास संपत्ति है इसका ऐसे बैलेंस रखें, और इस प्रकार दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ द इकोनॉमी। इस प्रकार स्वास्थ्य का मैनेजमेंट कैसे करें, स्वास्थ्य का मैनेजमेंट के लिए भी तीन बातें आपको बताऊंगा। स्वस्थ जीवन जीने के लिए दिस इज द ट्रायड ऑफ योर हेल्दी लाइफ, फर्स्ट इज योर डाइट। आज दुनिया में जितनी बीमारियां भी हो रही है वास्तव में हमारे जो खाना खाते हैं इसमें वास्तव में ये संतुलित नहीं है। आज कितने प्रकार के प्रदूषण है, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स कई प्रकार के सब इंसेक्टिसाइड सब डाल के पॉइजन कर दिया गया है। आज पानी कहीं पीने का सेफ नहीं है। आप मैं अभी ट्रेन में आ रहा था, एक पिरामल कंपनी का वो जगह जगह जैसे एटीएम होता है आप कार्ड स्वीप करो पैसा मिलता है, वो एटीएम पानी का वो सारा डाल रहे मशीन्स और ये कर रहे हैं, तो कहीं भी जाके आप कार्ड रखो उसमें आप पानी ले सकते हो सेफ वाटर। तो आज 35 साल पहले मैं आपको बता रहा हूं, मैं दिल्ली फर्स्ट टाइम जब आया था लेट 70s में पहली बार देखा एक ठेला गाड़ी में एक आदमी एक एक ग्लास में पानी रख के पानी बेच रहा था, 10 पैसा 10 पैसा। मैं बोला कि बदमाश पानी बेच रहा है, मैं उस समय मुझे बड़ा हलचल हुआ एकदम अंदर कैसा एकदम हलचल हुआ। और आज एक बोतल 20 रुपया 15 रुपया देके खुद खरीद रहे हैं। आप सोचो क्या आप कहीं भी पानी पीना भी सेफ नहीं है, क्या हालत हो गया है देखिए। तो आज दुनिया में बीमारियों का मेन कारण मैं एक कहूंगा कि हमारे भोजन, अगर हमारे भोजन ठीक हो जाए माताओं का सबसे बड़ा सही सारे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ रखने का बहुत बड़ा एक अवदान है हाथ आप सभी का है। माताएं अगर अच्छी तरह से भोजन बना के घर में खिलाएं सभी स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन माताओं का प्यार तो मैं क्या कहूंगा, तेल घी से बहता है, पानी से नहीं तेल घी से प्यार बहता है। इतना तेल घी खिलाएंगे सबको कि बात मत पूछो, जिसके कारण सब बीमार है। आपको पता है कि दुनिया में एक साइंटिस्ट लोगों ने हर पशु पंछी जानवर कुत्ते बिल्ली गाय भैंस कबूतर कौवा सबको लेके उसका खून चेक किए, किसी का भी कोलेस्ट्रॉल 50 से ज्यादा नहीं है, किसी का भी नहीं, नोबडी नो एनिमल। परंतु मनुष्य एक ही प्राणी है जिसका कोलेस्ट्रॉल 300 से ज्यादा है। तो इसलिए घर में आपका सबसे बड़ा उपकार होगा अगर कम से कम तेल घी यूज करोगे, कम से कम नमक यूज करेंगे, वही खा के आज हम सभी बीमार हैं। तो घर में कैसे बैलेंस डाइट कैसे क्या है वो समझना जरूरी है, क्या खाना चाहिए। आज देखो जहां जाओ जंक फूड फास्ट फूड खा के सत्यानाश, मैं आपको बता रहा हूं आप कहीं भी जाओ फास्ट फूड सब खा रहे हैं और इसलिए फास्ट बीमारियां, फास्ट ब्लड शुगर, फास्ट बीपी सब एकदम, जहां जाओ पुड़िया फाड़ रहे उसमें सब प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कैंसर पैदा हो रहा है। मैं आपको बहुत सारे वीडियो क्लिप्स है मेरे पास, खुद मैं जला के दिखाता, टाइम नहीं है नहीं तो दिखाता, एक चिप एक कुरकुरे जला के देखो कितना क्या होता है उसमें। तो इसलिए ये सब बिल्कुल बाजार की चीजें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कहावत है दाल रोटी खाओ जो सिंपल खाएगा, एकदम सिंपल भोजन, दाल रोटी सब्जी चावल खाओ, देखो बिल्कुल कभी कोई बीमारी नहीं होगी, ना एसिडिटी, ना बदहजमी, ना इंडाइजेशन, ना कुछ भी बीमारी नहीं होगी, देखना एकदम फिट रहेंगे आप। लेकिन ज्यादा चटपटा, ये जीव के स्वाद के लिए आज आदमी क्या नहीं खाता है, क्या नहीं करता है, फिर जिसके कारण बीमार है। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आज हम सभी सेडेंटरी हो गए हैं, आज मशीन के जमाने में हम हिलना नहीं चाहते हैं, डुलना नहीं चाहते, आज 5 कदम चलने का रास्ता भी होगा तो हम चलना नहीं चाहते, हमें गाड़ी चाहिए, वो भी एयर कंडीशन गाड़ी चाहिए। आजकल कुछ भी माताओं के लिए सबसे ज्यादा सुविधा है, घर में इतने सब डोमेस्टिक अप्लायंसेस आ गए हैं, खाली बटन दबाने का काम है। अरे पहले कुछ करते थे तो कुछ बनाना हो तो सिलपट्टा लेके क्या लेके कितना सारा मेहनत करते थे, कपड़े धोते थे तो कितना चटका लगाते थे, कुछ सब बंद, खाली ग्रर हो गया सब, सब कुछ। और फ्रूट भी खाने के लिए फुर्सत नहीं, हमको कौन इतना चबाएगा, कौन करेगा। अरे पहले मसूड़े का, दांत का, ये सब मुंह का एक्सरसाइज तो होता था, वो भी करना नहीं चाहिए। इधर जूसर में ग्रर कर दिया, जूस निकल गया, पी लिया, शुगर भी ठुस 400 एकदम, सब रेसा निकल गया, बीमारी होगी। अरे फ्रूट खाओ, उसमें अच्छा है। तो हमारा भोजन भी जैसा, और हम सभी बिल्कुल आलसू सेडेंटरी हो गए हैं, जिसके कारण बीमारी है। एक गाड़ी आप बहुत एकदम लाखों करोड़ों रुपए का खरीद के लेके आए, और गाड़ी को खाली गैरेज में रखे रहोगे, चलाओगे नहीं, क्या होगा, क्या होगा, जंक हो जाएगा। इसी प्रकार आज देखा गया है, साइंटिस्ट लोगों ने कहा है, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इज हाजार्डस, जो लंबे समय तक बैठा रहता है वही सारी बीमारी होती है उसको, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इतना धीमी हो जाता है। अभी ही मैं दिल्ली से, बॉम्बे से आए थे एक ग्रुप, उनको डिस्चार्ज किया, कल डिस्चार्ज किया। एक माता आई थी, कितने दिनों से उनको डायबिटीज, सब बीमारी तो है, लेकिन उनके सारे शरीर में पेन है, खड़े होने के लिए तैयार नहीं, चलने के लिए तैयार नहीं, 6 महीना से इतनी सफरिंग कर रही थी, गोली खा खा के। मैं कुछ नहीं कराया, कुछ गोली, एक गोली भी नहीं दिया एनाल्जेसिक, पेन किलर। 5 दिन तक एक्सरसाइज कराया, और वीडियो एक्चुअली मैं आपको दिखा था, लाया नहीं, अभी अभी जस्ट रिकॉर्ड किया। 5 दिन तक खाली एक्सरसाइज कराया, सवेरे शाम सवेरे शाम। कहते मेरे सारे दर्द खत्म हो गया, मैं खड़े होने के लिए काबिल नहीं थी, मैं मार्केट जाके, माउंट आबू के मार्केट जाके मार्केटिंग करके आ गई, अभी देखो बिल्कुल मेरा सब गायब हो गया, मैं रिकॉर्ड किया हूं पूरा सारा। क्या होता है जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक्टिव नहीं रहते फिजिकली, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इतना स्लगिश हो जाता है। हमारा ब्लड का काम दो है, एक होता है हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, जो खाना खाते हैं जो शुगर, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन को दूर दूर तक हमारे शरीर में चारों तरफ सप्लाई करना, ताकि हमें शक्ति मिले, ताकि हम कार्य क्षमता हमारे अंदर आए। फिर उसको यूज करने के बाद जो उसमें जो अनयूज सब्सटेंसेस है, जो जरूरत नहीं है शरीर के लिए, ऐसे चीजों को खून फिर लेके आके वापिस हमारे पसीने के जरिया से, हमारे सांस के जरिया से, हमारे पेशाब के जरिया से बॉडी को एक्सक्रीट कर देता है। जो व्यक्ति नहीं घूमता है, नहीं वॉकिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, वो ब्लड सर्कुलेशन इतना धीमी 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 हो जाता है, वो निकलते नहीं है। जैसे किसी नलका में पानी एकदम धीरे धीरे फ्लो हो रहा है, उसमें अगर गंदगी है तो क्या होगा, सेटल डाउन होते 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 एक दिन क्या होगा, चौक हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे सारे नसें ब्लॉक हो जाती है, फिर हार्ट अटैक, फिर ये, और वो इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस जब निकलते नहीं है तो यहां दर्द, यहां दर्द, यहां दर्द, कमर दर्द, चारों तरफ। मैं उसको 5 दिन खाली एक्सरसाइज कराया, एकदम सब खत्म। तो जीवन में जो रोज सवेरे आधा घंटा पौना घंटा चलते हैं, हाथ उठाइए, बस बस इतने रोज रोज। चलो आप सभी की बधाई हो, ताली बजाओ भाई, सभी बजाओ। लेकिन जो नहीं चलते हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि वॉकिंग इज द बेस्ट पॉसिबल एक्सरसाइज, चलना जैसा एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको कोई कहीं जिम खाना में जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन वो भी अगर नहीं कर सकते हो, मैं एक सुंदर एक्सरसाइज सिखाऊंगा, आप अगर करना चाहते हो तो यहां सिखाऊंगा, करेंगे सभी, 5 मिनट का ही है। इतना भी अगर घर बैठे करोगे ना, देखना आपका ब्लड सर्कुलेशन, जो वही कराया वो माताजी को, एकदम ब्लड सर्कुलेशन इतना हो जाएगा, आप यू विल बी टोटली रिज्यूविनेटेड, अभी 5 मिनट में देखना एकदम रिफ्रेश हो जाएंगे, करेंगे सभी। अच्छा, तो एक्सरसाइज करना जीवन में जरूरी है, अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप कभी भी बीमारी से मुक्त नहीं हो सकते हो। नेक्स्ट है, हम टेंशन फ्री रहने के लिए, आज जीवन में जो बता रहा था, आज स्ट्रेस एंड टेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ऑल डिजीज, तो टेंशन से मुक्त होने के लिए दोस्तों दुनिया में कोई दवाई नहीं है। टेंशन फ्री करने के लिए लोग शराब सिगरेट ये सब लेते हैं। जब तक नशा है ठीक है, नशा उतर गया ज्योंगो त्यों, तो ये कोई हल नहीं है। इसी प्रकार किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको दो गोली दे देगा, खा के सो जाओगे, फिर उठोगे तो वही टेंशन। इसलिए मेडिटेशन इज द सियोरेस्ट मेडिकेशन फॉर टेंशन। तो जीवन में स्वस्थ रहने के लिए दोस्तों तीन बातें याद रखो, मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ जो आपको यहां अच्छी तरह से सिखाएंगे, अच्छी तरह से सीख के जाओ। देखो जीवन में तनाव मुक्त हो गए ना जीवन में, अरे मजा आ जाएगा, क्या आनंद आएगा देखो। एंड मेरा जीवन का अनुभव मैं आपको बता रहा हूं, आई ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूशन 30 years back व्हेन आई ज्वाइन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, एक बड़ा हॉस्पिटल में पढ़ाई पूरी करके जब नौकरी ज्वाइन किया, इतना वहां गर्दी डेली 200-250 पेशेंट देखो, इतना आगे पीछे भीड़ के। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो कोई एक के बाद लाइन से तो कोई आएगा नहीं, 25 लोग घेराव करके एक ही साथ पूरा आपके आगे पीछे सब चिल्लाने, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, डायरिया हो रहा है, कैसा लगेगा आप सोचो। मैं तो यंग एज में मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं तो मुझे बहुत जल्दी हार्ट अटैक हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ऐसे समय पर ही मैं ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय हमारे बहनों के संपर्क में आया, इन्होंने मुझे मेडिटेशन सिखाया। आप यकीन नहीं करेंगे मेरा एक महीने के अंदर पूरा लाइफ ही चेंज हो गया, पूरा लाइफ। आई बिकम द मोस्ट पॉपुलर डॉक्टर इन दैट हॉस्पिटल। आज भी 30 साल के बाद लोग आज भी मुझे याद करते हैं। तो दोस्तों जीवन में आप जो भी हो आप, मैं यही कहूंगा आप मेडिटेशन सीखो, देखो लाइफ में क्या मिलता है। और इसके लिए कोई धर्म चेंज करने की जरूरत नहीं, कोई ड्रेस चेंज करने की जरूरत नहीं, कोई काम छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई भगवे कपड़े पहन के कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो मैं डॉक्टर हूं, मेडिसिन प्रैक्टिस करते हुए भी तो कर रहा हूं, जब मैं कर सकता हूं आप क्यों नहीं कर सकते। हर कोई कर सकता है। तो मेडिटेशन अच्छी तरह से सीखो, देखो जीवन में क्या मजा आता है, आनंद आता है। सो मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ, बैलेंस्ड एंड वेजिटेरियन डाइट एंड एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी, दे आर द ट्रायड ऑफ हेल्दी लाइफ। एंड जीवन में एक सुंदर कोई भी काम करो, मजा आए, आनंद आए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीप ए बैलेंस ऑफ कर्म एंड योगा। हमारे देश में श्रीमद भगवद गीता पढ़िए, भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन योगस्थ कुरु कर्माणि, तो कर्म करते समय भी योग युक्त होकर करो। जो मनुष्य भगवान को याद करके कर्म करता है उसमें सफलता ही सफलता। इसलिए योग व मेडिटेशन जिसको कहते हैं, योगः कर्मेषु कौशलम् कहा जाता है, अगर योग युक्त होकर कोई कर्म करेंगे तो उसमें परफेक्शन आपको अचीव करेंगे और वो अच्छा होगा। लेकिन आज मनुष्य के जीवन क्या है, हरी वरी और करी, इसी में ही जीवन बिता रहे हैं जिसके कारण सफरिंग कर रहे हैं। तो वरिंग डज नॉट टेक अवे टुमारोस ट्रबल, कल की जो समस्या है आपके तो चिंता करने से टेंशन करने से तो जाएगा नहीं, वरंग और क्या होगा, आज के शांति खो जाएगी। इसलिए वरिंग नहीं करना है आपको, मेडिटेशन करना है। टू स्टॉप वरिंग लर्न प्रैक्टिस मेडिटेशन। बट व्हाट इज मेडिटेशन, मेडिटेशन इज द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ द रियल आई। मैं वास्तव में कौन हूं उसको रियलाइजेशन करने का नाम ही मेडिटेशन है। क्या आप सचमुच ये शरीर हो, नहीं नहीं, ये शरीर तो वास्तव में एक हड्डी मांस का पुतला ही है जो इन आंखों से देखते हो। आप कभी ऑपरेशन थिएटर में आओ, मैं दिखाऊंगा इस शरीर में क्या है, खाली मल मूत्र कफ पित्त रक्त सारा भरा पड़ा है, ऊपर से एक पॉलिथीन जैसा चमड़ी ढकी हुई है, अंदर तो क्या है आप देखो, दिस इज द रियलिटी। तो आज मनुष्य अपने को यही सोचता है, परंतु हम ये नहीं है, हम एक एक वास्तव में एक स्पिरिचुअल बीइंग है, एक भौतिक चीज नहीं है, एक आध्यात्म सत्ता है, एक चेतना शक्ति है जो शरीर के द्वारा मैनिफेस्ट हो रहे हैं, व्यक्त हो रहे हैं, अभिव्यक्त हो रहे हैं। तो देखिए किसने कहा है, जिसकी आत्मा जितनी सुंदर है उसका शरीर भी उतना सुंदर है। आज हम सभी की आत्मा बीमार हो गई है, आत्मा के अंदर घृणा नफरत क्रोध वैर विरोध ये सब बीमारियां घुस गई है, जिसके कारण शरीर भी बीमार है। अगर आत्मा स्वच्छ निर्मल पावन शुद्ध सत्प्रधान हो जाएगी, शरीर भी बिल्कुल निरोगी हो जाएगी। तो यहां हमारी बहनें आपको आत्मा को निरोगी बनाने के लिए सिखाएंगे, लेकिन मैं फिजिकल डॉक्टर भी हूं, इसलिए आपको फिजिकली हेल्दी रहने के लिए क्या टिप्स भी वो भी मैं आपको सुनाया सिखाया। सो मेडिटेशन इज रियलाइजिंग द सेल्फ एज ए सोल एंड रिमेम्बरिंग द स्वीटेस्ट फादर सुप्रीम सोल। सो लर्न द आर्ट ऑफ बैलेंस इन लाइफ, ठीक है ओके, दिस इज कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस। आप अपने व्यावसायिक जीवन और पारिवारिक जीवन दोनों का एक सुंदर समन्वय रखिए, संतुलन रखिए, देखिए जीवन में बहुत खुशी से जीवन बिताएंगे। गुड लक। थैंक यू। ऐसा ही करेंगे, हाँ ठीक है भाई, एक गीत बजाएंगे, मेरा बाबा आतम पंछी गाए रे। सभी अच्छी तरह से बैठिए, इरेक्ट होके स्ट्रेट होके बैठिए। एक मिनट थोड़ा, जस्ट एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये जो एक्सरसाइज करा रहा हूं, ये आपके सारे शरीर का, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। वो कैसे बढ़ेगा, इसको कहते हैं एक्यूप्रेशर थेरापी व सेल्फ बॉडी मसाज। देखो दुनिया में जो मसाज नेचुरोपैथी सेंटर में जाते हैं, 1000 रुपया देना पड़ता है मसाज करने से। सभी बच्चे याद होगा बचपन में माँ हमारी मसाज करते, कितना मजा आता था। तो 1000 रुपया काहे को दो, खुद बॉडी का मसाज कैसे करो मैं आपको सिखा दूंगा। और ये एक एक्यूप्रेशर थेरेपी भी है, हमारे हाथ में बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है जो बॉडी का सारे ऑर्गन को स्टिमुलेट कर देते हैं। तो इस एक्सरसाइज से आपका होल बॉडी का सारा सब मसाज भी हो जाएगा और एक्यूप्रेशर भी हो जाएगा। आप गीतों के साथ मेरे साथ ताल मिला के करना है। तो जब चेयर में बैठ रहे हो, चेयर के थोड़ा सा आधा चेयर में बैठो, आधा चेयर में आगे थोड़ा ऐसा, चेयर को आगे खिसाने की जरूरत नहीं, खुद आगे ऐसा थोड़ा बैठो, ठीक है। अभी जो गीत बजेगा, गीत के साथ साथ मेरे साथ शरीर में जहां जहां मैं थपकी लगाऊंगा लगाना, लेकिन इतना जोर से थपकी नहीं लगाना ताकि लाल हो जाए, और इतना धीरे धीरे भी नहीं जो मच्छर भी नहीं मरे, तो मीडियम, ठीक है। स्टार्ट।